दामोदराधर सुधाम गोपी का भूते संयतर शिष्ट संहृत सचो अस्तो मूर्ति सर्व कार्य सनातन गोस्वामी है छोटे देश के श्लोक बृहद भगवत And he is explaining this slope in various ways. Natavar Sani Ji, Srimad Bhagavat ke slope ko lekar, tarah tarah se iski vyakhya kar, usar sasadan kar rahe hain, और रसिक भक्तों को प्रदान कर रहे हैं। कृष्णदास आते ये श्लोक श्रीमद् भागवत के देवी गीत का है। दिस श्लोक इज वन ऑफ द श्लोक ऑफ देवी गीत एंड दिस श्लोक आफ्टर अपना सामने फल विदम न परम विदान एंड चित प्रवाल बरह सौत कला मालान पृष्ठ परिधान विचित्र वेश मध्य विवेज तु अलम पशुपाल रंगे जथा न पर इसे श्लोक में इसे श्लोक के द्वारा सनातन गोस्वामी कहा गोपियां जब कृष्ण को चरण करने के लिए जाते हैं उस समय कृष्ण अनुरागी गोपियां अपने पूर्वराग जनित उनको पूर्वराग होने के कारण उत्कंठा से मिलन की उत्कंठा से अत्यंत अधीर हो जाती है और वेणुगीत को सुनकर उनको कृष्ण की स्फूर्ति होती है। उस समय में अपने कृष्ण अनुराग को ये छिपाना चाहते हैं किंतु बरबस उनके मुख से ऐसे कुछ शब्द निकल जाते हैं जिससे कि वो अपने भावों को छिपा नहीं पाती। अपने कृष्ण अनुराग वह कृष्ण इज गोइंग टू काउ हर द गोपी असेंबल हु वेर ऑफ द सेम मूड दैट इज समझ आते एंड बिगन टू डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ वेणु But when they began, at once Krishna came in their heart and they were at once attracted to Krishna and began to say about Krishna. That is why they wanted to cover their mouth and that is why they were describing the sweetness of Krishna's mouth And that is why the peasant to tell about Krishna and Baldev Bhav. But they wanted to glorify only Krishna. वे अपने कृष्ण प्रेम को, जो मैं कृष्ण को अत्यंत अधिक प्रेम करती हूँ, इस भाव को छिपाने के लिए उन्होंने बलदेव जी का भी नाम दिया, किंतु यह बात छिपी नहीं रही, गुप्त नहीं रह सकी। वे अपने इस अवहित्था भाव को गुप्त नहीं कर सके। फिर उनको कृष्ण का रूप स्मरण आते ही उन्होंने देखा भाव नेत्र से कि कृष्ण गोचार में जा करते समय एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हैं। हजारों सखाओं और गोपियों के समय सखाओं और गायों के साथ में घिरे हुए जा रहे हैं और वेणु वादन कर रहे हैं। महाभाव का एक लक्षण यह है कि अप्राणी में भी कृष्ण दर्शन, कृष्ण स्पर्शन का सौभाग्य वो व्यक्ति देखता है। अप्राणी में भी, तृण में भी ये देखता है कि कृष्ण जा रहे हैं और एक तृण जो ओस बूंदों से पानी से भिजा हुआ है कृष्ण के चरणों में संलग्न हो गया, छोटा सा तृण, और कृष्ण के चलने पर भी वो उससे नहीं निकलता, हटता नहीं है। तो गोपियां देखती हैं कि ओह, तृण का इतना सौभाग्य कि इनके चरणों को छोड़ नहीं रहा है, और उस तृण के प्रति उनको ईर्ष्या होगी और उसकी महत्ता वो समझेंगे और कहेंगे जाओ हम तो ऐसी दुर्भागा हैं कि हम जो चाहते भी नहीं कर सकते और ये छोटा सा तृण कृष्ण के चरण में लगा हुआ है। यदि ये देख लिया जैसे उसमें थोड़ा सा पैरों में कुमकुम है और उसमें वो लग गया, देखो तो यदि मर करके हम तृण हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ये महाभाव का लक्षण है। अप्राणियों में भी, एक पत्थर के टुकड़े में भी, किसी भी निर्जीव प्राणी में कृष्ण के चरणों का स्पर्श, अंगों का स्पर्श देख करके वो मानता है कि इनका जन्म साफ है, इनकी आंखें सार्थक है, उनका सब कुछ सार्थक है। और यदि जगत में कोई दुर्भागा है तो हम है, मर करके तृण क्यों नहीं हम, विधाता ऐसा क्यों नहीं करता। Here, gopis are full of Mahabhav. All the gopis. Mahabhav is the highest mode of pain. What is the symptom of Mahabhav? If they will see anything which has no light, yes, light, any piece of grass, anything, and if they will see that, oh, it is attached to Krishna's feet, then they will have so much ishya with that Krishna. Yeah. I will speak in Hindi and Ramchandra will explain in English. So my time will be not lost and I am not exactly explaining English. So he will help me. I should speak Hindi only. What I told?
अभी ये बताया कि महाभाव का महाभाव की स्थिति ये होती है।
In English is.
महाराज जी saying that in the state of महाभाव
पहले श्लोक में उन्होंने बताया है। और यदि कोई जगत में धन्य है, किसी का जीवन सार्थक है, पशुपालो गोष्ठ्यान सखाओं का जीवन ही संसार में सबसे अधिक है। ये सखा लोग कृष्ण के साथ में सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। कृष्ण सो रहे हैं तभी आएंगे मधुमंगल सुबल और जून लवंग, और उनको अरे अभी सो रहा है कन्हैया, और सोते हुए उसको पकड़ करके उठा देंगे। सोने रहने पर भी उसको आलिंगन कर लेंगे, एक साथ में खाएंगे पिएंगे चलेंगे, दिन भर उनके साथ में गैया चराएंगे। कृष्ण जो कहेंगे वही करेंगे, फिर लौट करके आएंगे, फिर कृष्ण के साथ में भोजन करते हैं, स्नान करते हैं साथ में। इसलिए जगत में कोई धन्य है तो गोप बालक ही धन्य है। इसलिए हम लोग यदि जन्म लें तो अब स्त्री रूप में, गोपी के रूप में नहीं, अब तो हम लोग गोप बालक के रूप में आए, जैसे कृष्ण की हम लोग सेवा कर सके, उनका सब समय संग का सुख हम लोग प्राप्त करें। इसलिए गोप जन्म ही हमारा सब कुछ है, गोपियां समझ रहे। किंतु प्रेम के चरम उत्कर्ष पर महाभाव की विस्थाता में ये गोपियां हैं, इन सखाओं से भी बहुत उन्नत अच्छे भी आता है। ये प्रेम का ही ऐसे भाव है। जिस समय ये गोपों का सौभाग्य वर्णन कर रही है तो एक सखी कह रही है, गोप्यो किमाचर दैन कुशल हस्म देन। अरे सखी, अरे देखो तो इन गोप बालकों की तो सौभाग्य की बात छोड़ दो, उन लोगों ने कृष्ण के साथ में जन्म लिया है, एक साथ में बचपन से नंगी स्थिति से ही एक साथ में चलते कुत्ते आए हैं, एक साथ में लाड प्यार यशोदा जी का भी पाया है, इन सखाओं की तो बात छोड़ दो। अरे देखो तो ये नीरस बांस की नाना प्रकार के छिद्र से युक्त नीरस निष्ठुर और कठोर ये बांस, उसका बांस का एक टुकड़ा, इसका कितना सौभाग्य है कि ये कृष्ण को अथक पर तप्त में दी आजित रहती है। कृष्ण इसे कभी अपने यहां पर पगड़ी में रखते हैं, कभी अपने अटजठर पर अपने कमर की फेटे में उसे रोक रखते हैं, कभी अपने बस्तखल में लेकर के सोते हैं, और कभी अपने इन अधरों पर रखते हैं, अपने अधरामे से इसका चिंतन करते हैं। देखो तो इसका सौभाग्य। ओ अरे चक्री गोप्य सीमा चलो अयं कुशल हस्म देन। इस दिन ने पूर्व जन्म में किम कुशल, इसने कौन सा पुण्य किया, कौन सी बड़ी तपस्या की थी, कौन से तीर्थ में इसने स्नान किया था, न जाने क्या दान किया था, न जाने किसकी आराधना की थी जो इसको इतना सौभाग्य हुआ जो ये निष्कुल में जन्म लेने पर भी। यदि हम जानते तो ऐसी ही तपस्या। चलो योग माया पूर्णिमा जिसके पीछे वो भूत भविष्यत और वर्तमान जानने वाली है, और उनके जान लेने के बाद हम भी वैसे ही कठोर तपस्या करेंगे जिससे अगले जन्म में बांस बन करके आकर के बांसुरी बन करके उनके होठों पर हम विराज। थी वहां बीती में टोक दिया, क्या कर रही है वो दूसरी सखी, उसके पहली सखी की बात सुनकर की माचर माने क्या क्या किया, खाक पत्थर कुछ नहीं किया। ये तो पूर्व जन्म में कुछ ऐसी ऐसे कुकर्म किए होंगे जिसे कठोर बांस का जन्म मिला था और उसके बाद में काटी गई और आग में लोहे को गर्म करके दागी गई, छेद दिए गए। इसके जन्म से ही ये पता चलता है कि इसने क्या किया, कोई बुरा ही कर्म किया होगा, नहीं तो ऐसे यदि कोई अच्छा कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म होना चाहिए, तो इसने क्या क्या किया, इसलिए की मात्र तुच्छ रूप में ये कह रही है हमारे एक दूसरी शक्ति क्या किया होगा है? पांच जन्म दिया और लोग गर्म लोहे से ये दागी गई, उसे काटी गई, इससे क्या जन्म होगा, इसने कोई भी अच्छा नहीं किया। देखो जो पुरुष होकर के भी स्त्री का काम कर रही है, यही से ये कर रही है, काम जैसी कर रही है, पहली वाली जो सखी थे ऐसा ये कहना ठीक है, देखो तो कितना इसका सौभाग्य है, तुम्हें ऐसा सौभाग्य है। दामोदरा धर सुधाम गोपिका नाम, देखो कितना इसका सौभाग्य है कि जो पहले मैंने कहा भले ही किसी नीच जन्म जाति में जन्म दिया उससे क्या होता है, अरे देखो जिसका कैसा सौभाग्य है कि कृष्ण का अधराम भाई जो गोपिका ना जो गोपियां इसके उत्तराधिकारी हैं हम हैं। दामोदर अर्थात देखो बंसी के साथ में कृष्ण का कब से संबंध हुआ, हमारा संबंध हुआ कब से, जब से जन्म हुआ, और इस गोपी का इस वेणु का कृष्ण के साथ में जो मिलन हुआ ये दामोदर लीला के बाद में, उसके पहले कहीं भी बंसी का या वेणु का कोई भी उल्लेख कहीं नहीं मिलता। जिस समय कन्हैया को मैया ने बांधा उस समय वेणु का उल्लेख वहां पर नहीं है, जो वेणु के साथ में उनको बांधा, दामोदर लीला, इसलिए दामोदर को यहां पर कहा दामोदर, दामोदर लीला तक उसके पहले भी हम लोगों से कृष्ण का संबंध था बचपन से, हम लोग लंगट किया याद, उस समय गोपियां भी कोई वस्त्र नहीं, कृष्ण भी कोई वस्त्र नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं डोल रहे हैं बहन के साथ, तो बचपन से ही हमारा संबंध है, हम उसी कुल में आए हैं जिसमें ये कृष्ण आए हैं, वह है क्या गोपेंद्र नंदन, गोपेंद्र कौन है नंद बाबा, और ये कौन है गोपेंद्र नंदी श्रीमती राधिका, और भी जितने हैं सब गोपों की लड़कियां हैं ये सब, इसलिए बचपन से ही हमारा संबंध है। दामोदर लीला के बाद में ये बंसी का संबंध, तो कुछ दिन में ही इसका ऐसा प्रभाव हो गया जो हम लोगों के इस धन को, किस धन को, जिसमें गोपियों का ही एकमात्र धन है कृष्ण के अधरामृत में, और बलपूर्वक हमारे सामने हमको दिखलाती हुई, हम लोगों को अंगूठा दिखलाती हुई, दिखलाता हुआ या वेणु निर्लज और देहाया होकर उसको लज्जा दी और डकैती एक तरह से कर रहा है, हमारे धन को हमारे सामने ही में हमें दिखला करके अंगूठा और पान कर रहा है, देखो तो कैसा ये ठीक है। चलिए यहाँ यह एक लक्ष्य करने की बात है कि एक बांस का छोटा सा खंड नीरस निष्ठु नीरस और कठोर और गोपियां उसके साथ में ईर्ष्या कर रही हैं और बड़ी दीनहीन होकर के बोल रही हैं और असहाय हो रहे हैं उसके सामने, देखो हमको दिखला करके अंगूठा हमारे सामने कहते तू क्या कर लेगी हमारा, देखो तो मैं तुम्हारा ले रहा हूं, गोपियां उसके सामने असहाय बने, यही महाभाव का लक्षण प्रेम का अत्यंत वह माने महाभाव उत्कर्ष है प्रेम का, जिसमें अयोग्य व्यक्ति में भी निष्प्राणी में भी उसे ईर्ष्या कलह और चित्त विक्षिप्त होकर के महा उन्माद हो जाता है इनको गोपियों को, उन्माद की अवस्था में न जाने क्या क्या बकती है, ये महाभाव का लक्षण है। इसलिए कह रही हैं पान शब्द नहीं दिया, भोंगते स्वयं, भोंगते माने क्या, भोग करता है, क्या भोग करता है, जैसे संसारी लोग भोग करते हैं, अनेक चीज का जो कि दूसरे के लिए संबंध है, प्रिया प्रियतम के लिए ही संभव पर हो सकता है, उस अधरामृत का ये भोग करता है, रसास्वादन करता है। मतलब क्या इनको ईर्ष्या हो रही है, जहाँ है हमें हमारी चीज और हमें हमारे सामने ये दूसरा भोग कर रहा है। जद अवशिष्ट रसम जद अवशिष्ट रसम, इसकी सनातन गोस्वामी जी बहुत इसका अर्थ कर रहे हैं, बहुत प्रकार के, वो तो सभी श्लोकों का बहुत तरह से अर्थ कर रहे हैं। सभी करें गोपियां कहिए देखो सखीरी भूंगते स्वयं जद अवशिष्ट रसंग, ये वेणु निष्ठुर होकर स्वयं नीरस होकर के भी कृष्ण का अधर रस कभी भी कम नहीं होता। जितना कोई उसके अधर रस का पान करे वो तो पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण मद पूर्णमिदम, इसलिए निरंतर पान करता है, कभी छोड़ नहीं सकता। एक अर्थ ये जद अवशिष्ट रसम, कभी न अवशिष्ट रसम, कृष्ण का घर ही ऐसा है जिसमें सब समय अमृत भरा रहेगा। यह निरस वेणु उस अधर को भी निरस बनाना चाहता है पान कर, किंतु पान नहीं कर नहीं पाता, इसलिए निरंतर पान कर रहता है। गोपियों को देखकर के बड़ा खेद हो रहा है और इससे ईर्ष्या हो रही है, देखो तो ये कैसा ढीठ है, निडर है, ऐसा कर रहा है। दूसरा अर्थ ये होगा जब अवशिष्ट रसम एक बूंद भी रस नहीं छोड़ता है। अवशिष्ट और माने होता है हीन, हीन माने नहीं, रस रस नहीं है, ऐसा करना चाहता है, ऐसा पान करता है दूसरी कोई शक्ति करी। अरे तो ये तो ऐसा पान करता है कि एक बूंद भी थोड़ा सा भी नहीं रखता, और इसी कारण कृष्ण का अधर जो लाल होता है, कैसा लाल, फल के समान बिंब फल, उनको भी पराजित करने वाला कृष्ण के ये दोनों अधर हैं। इतना सुंदर, इतना स्निग्ध, इतना रसपूर्ण, इतना सुगंधी, इतना सुस्वादु कृष्ण का अधर, किंतु ऐसा पान करता है कि एकदम सूख जाता है उनका और उनके होठ पीले पड़ जाते हैं, ऐसा ये निष्ठुर है। अथवा अथवा और क्या लिखा था,
अवशिष्ट राग,
जो से बोलो अब कुछ नहीं,
अवशिष्ट और रस अर्थात राग,
हाँ? वो तो बतलाया है यहाँ पर, जब अवशिष्ट रसंग, तो एक पहले बतलाया था ना, जबकि वो जितना भी कर, अच्छा आप बोल दी गोपियां महाभाव में सर्वदा स्थित रहते, तो सनातन गोस्वामी ने अवशिष्ट पद का अर्थ ये किया, और माने ही और शिष्ट माने शेष, न शेष, शेष नहीं है, संपूर्ण रूप से इन्होंने पान कर दिया, एक बूंद भी नहीं रहने दी। फिर वही अर्थ फिर करते हैं अवशिष्ट अ माने न होता है, अ माने न अवशिष्ट अर्थात तनिक भी शेष नहीं। फिर और करते हैं निरंतर अवशिष्ट का और मैने रस मैने राग राग थकले राग रहने पर जैसा होता है अर्थात ये कभी भी कृष्ण से रस उनका सुख नहीं सकता इसे निरंतर ये पान करता है ठीक होकर के हमको दिखला करके और सबसे अच्छा अर्थ तटस्थ होकर के करते हैं स्वयं सनातन गोस्वामी या सुखदेव गोस्वामी वो क्या अवशिष्ट रसन गोपिका ही इसके एकमात्र उत्तराधिकारी हैं वे इसका पान करती हैं पान करके करने के बाद में ये जैसे प्रसाद होता है फिर महाप्रसाद महा महाप्रसाद होता है ऐसे ये सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये वेणु कितना सौभाग्यवान है गोपियां उसको पान करती हैं तो ये प्रसाद हुआ और गोपियों ने पास पास यदि पान किया तो ये हो गया महा महाप्रसाद और उनके पान से अवशिष्ट जो रह गया उसको ये वेणु पान करके महा महा महाप्रसाद पान करके ये कितना धन्य है जो हम इसके सौभाग्य का मैं हम वर्णन नहीं कर सकती हैं ये सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कौन लवंग मंजे ये कौन है ये सखी है वो जो सखियां हैं जो कह रही हैं वो नायिका सखियां हैं श्रीमती राधिका चंद्रावली श्यामला भद्रा ललिता विशाखा वो सखियां का कथन पहले वाला है और ये कौन कह रही है नित्य सखी और प्राण सखियां जिनकी आख्या मंजरी है इसलिए वो देख रही हैं कि देखो हमारी प्रियाओं हमारी जो प्रियतमा जो गोपियां हैं हमारी सखियां हैं उन्होंने ही पान किया और उसके बाद में प्रसाद के जीव रूप में रह गया अब ये पान करके कितना धन्य और सौभाग्य इनको और अधिक ईर्ष्या होती है उन लोगों को जितना ईर्ष्या असूया और दुख होता है उससे अधिक ये हमें नहीं मिला और ये बंसी ने वेणु ने हमें छुटकार कर ये लज्जापूर्वक निर्लज्ज होकर के ये पान कर रहा है ये किनका भाव है उनका हमारे उज्ज्वल नील के नीलमणि के इस प्रसंग में जहां गोपियों को दो भागों में किया गया एक एक कामात्मिका कामात्मिका गोपियां कामात्मा गोपियां दो प्रकार की एक पहला संभोग इच्छा मई और एक है तद इच्छा भाव मई तद भाव इच्छा मई इनके लिए इन दोनों में कुछ अंतर है वो कृष्ण के लिए मिलने के लिए उत्कंठित हैं और ये उत्कंठित हैं किस में दोनों को मिलन करा करके उसका रसा साधन करने के लिए उत्कंठित होते हैं इनमें विशेष एक बात ये है उन लोगों के लिए जो अष्टसात्विक भाव इत्यादि जो विकार होते हैं लिखवाया था वहां पर इनका कुछ दोनों में विशेष अंतर यह है कि उनके उनका कृष्ण के प्रति अनुराग है श्रीमती राधिका इत्यादि का और इनका क्या है इनका अनुराग है दोनों के मिलन करा करके उन दोनों की सेवा करने के लिए इनका अनुराग है तो ये कह रही हैं, इसीलिए कह रही हैं, ये खेद के साथ में, ये भी खेद खेद के साथ में कह रही हैं। और इन दोनों का जो महाप्रसाद रूपी जो अधरामृत था, जो हम लोगों इसके उत्तराधिकारी, ये बैरून हमें धिक्कृत कर, हमें दूर कर, हमारे सामने ही में नित्य निरंतर उस महा महा महाप्रसाद के पार कितना धन्य है। बोलिए। सनातन गोस्वामी और व्याख्या करें, बहुत सुंदर, बहुत अधिक विशेष ध्यान देकर के सुनिए। भूमते स्वयं यद अवशिष्ट रसम हृदय हृष्ट, जिस समय यह वेणु कृष्ण के अधरों पर विराजित रहकर उनका अधरामृत पान करता है, तो समय वो कूज उठता है, कूज उठता है मैंने, वो भी उन्मादित हो जाता है और उन्मादित होकर के ऐसा अस्फुट स्वर करता है, मधुर शब्द करता है, जिसे सुनकर हृदयों सरोवर, जैसे नदियां हैं यमुना नदी, जैसे कुसुम सरोवर है मानसी गंगा जी है, और सब सरोवर है जलाधार, ये सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। इसका मधुर रस में और भी बहुत गूढ़ रहस्य पूर्ण अर्थ किया जा सकता, किया ही इन्होंने, किंतु वो सब कहना ठीक उचित नहीं समय पर, इसलिए वो कहते हैं साधारण अर्थ ही प्रकाश करते हैं कि यह उन्मादित होकर, उन्मत्त होकर ऐसा मधुर और अव्यक्त शब्द करता है, जिसे सुनकर जमुना मानस गंगा कुसुम सरोवर आदि ये जलाधार आनंद से उत्फुल्ल हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। कैसे? अभिनत कमल के फूल, कुमुदिनी के फूल विकसित होते हैं, मानो सरोवर और नदियां हंसती हैं। आज देखो हमारे रास्ते पुष्ट हुआ है, वृक्ष जितने हैं ये हमारे बेटे के समान हैं, हमारे ये वंशज हैं, उन वंशों में ये बांस, और बांस में जन्म लिया हुआ यह वेणु इतना सौभाग्यवान हुआ हमारे कुल खानदान में, जो ऐसा सौभाग्यवान जो निरंतर कृष्ण का धरामृत पान करता है, जो गोपियों का धन है, विशेष करके ये गोपियों का जूठा महाप्रसाद उच्छिष्ट रस का पान करता है, ये कितना भाई ऊंचा, ये सौभाग्यवान है। इसलिए आनंद के मारे उसके रोमांच, रोमांच माने कमल के फूल सब खिल उठते हैं, सुगंध निकलने लगती है चारों चारों तरफ में धीमी धीमी, और सारे वृंदावन को आमोदित कर देता है। हृदयों तचो अश्रु मुमुचु सर्वो जथार गया, जैसे किसी कुल में कोई एक लड़का ऐसा उत्पन्न हो जो सबसे बड़ी पदवी को प्राप्त हो सके। सबसे बड़ी पदवी क्या है संसार में? कृष्ण भक्त के समान और कोई पदवी नहीं, और कृष्ण भक्तों में भी ब्रज का कोई रसिक भक्त हो गया, उन रसिक भक्तों में भी एकांतिक रूप में कृष्ण के प्रति सखा हो गया या वात्सल्य भाव वाला हो गया, और उससे भी अधिक बढ़कर जति गोपियों के भाव वाला हो गया, श्रीमती राधिका जी के दासी में उसका नाम लिखा, इसे बढ़कर और साधारण रूप में लोग समझते हैं जैसे पेपर में आज देखा था कोई नए प्रधानमंत्री बने हैं भारत, गुजराला ना क्या। तो जब उन्होंने कौन वायसराय या क्या कहलाते हैं राष्ट्रपति ने उनको अपने भवन में बुला करके और कहा कि आपको मैं निमंत्रण करता हूँ प्रधानमंत्री बनाने के, बड़े खुश हुए। अब खुश होकर के जब घर आए तो उनकी माँ, उनकी स्त्री, उनके बेटा, बेटियाँ, उनकी स्त्री के सहेलियाँ आकर के गले में माला डालने लगी, उनके मैया उनको आलिंगन, बड़ी आनंदित हुई कि आज राष्ट्रपति पर जिसे कोई कल्पना नहीं कर सकता था कल तक, साधारण व्यक्ति और प्रधानमंत्री बन गया। क्या एक है ये बिल्ली के लिए छीका टूट गया ना सौभाग्य से, कभी उसके सौभाग्य में नहीं था, कभी संभव वर्ग नहीं था। ये तो कांग्रेस और उनकी लड़ाई की वजह से ये सब, जैसे एक अपदार्थ व्यक्ति भी जैसे कुछ हो जाते हैं, वैसे ही सबसे अधिक बड़ा पद है राधा जी का, दासी से बढ़कर के और जगत में कोई पद नहीं। हम लोग कहते हैं कि रूपानु रूप गोस्वामी के चरणों का किंकर होना, किंकरी होना, ये सबसे अधिक। तो ये आज वृक्षों के, वृक्षों का ये वंशज है, नदियों के पानी से वो सिंचित होता है, कौन ये बांस, जितने प्रकार के हैं कदम पीलू इत्यादि वृक्ष, मानो वो पानी पानी नहीं, क्या है वो उनका दूध है भैया, और उसे पान करके पुष्ट होते हैं। इसलिए कितना हमारा सौभाग्य है कि हमारा बेटा ऐसा पक पाया, ये तो नदियां सोच रही हैं और फूल होकर के कमल के बहाने हंस रहे हैं। और वृक्ष सब पीलू के वृक्ष हैं, कदम्ब के वृक्ष हैं, आम के हैं, कटहल के हैं, ये सभी वृक्ष आज बड़े आनंदित हो रहे हैं। आज हम वृक्षों के कुल में, आज ये बांस के कुल में, हमारे भैया का कुल बांस, कदम्ब, नीम, ये सब भाई हैं, परस्पर सखा हैं। आज ये बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज हमारे कुल में ऐसा वेणु उत्पन्न हुआ जो कृष्ण के अधरों को सदा विराजित रह करके उनका या पान करता है, जो गोपियों का प्रसाद लेते हैं। आज इसका कितना भारी सौभाग्य है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो भी पुलकित हो उठते हैं। कैसे पुलकित होते हैं, कैसे समझा, अरे देखने ही नहीं है सखी को, अरे सखी देखने ही रही, ऊपर से नीचे तक रोमांचित हो रहे हैं, फूल एकदम विकसित हो रहे हैं और मंजरियां उस पर लहक रही हैं, साथ ही साथ आंखों से प्रेम की सुखपूर्ण अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, मधु की वर्षा हो रही है। मधु की वर्षा माने क्या, यदि कोई देखा, जैसे वो उपमा दिया ना, कोई बेटा विदेश से आया, मैया ने देखा और बाप ने देखा कि हमारा बेटा बहुत दिनों के बाद में आया है, बस उनके आंखों से आंसू निकल गए, मानो ये मधु की धारा, ये उनका सुख से आनंद आश्रु उनके हैं। तो ये पुलकित हो जाते हैं, आंखों से आंसू झरने लगते हैं और कहते हैं कि साधु साधु आज हमारा यह कुल पवित्र हो गया और धन्य हो गया, तुम ऐसी पदवी को प्राप्त कर लिया जो कृष्ण के अधर अमृत को पान करने का अधिकारी हो गया। इसलिए कोई प्रसन्न हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं। चलिए, गोपियों ने देखा वेणु का सौभाग्य, गोपियां अपने भाव नेत्रों से देख रही है कि ये नदियां और ये वृक्ष वेणु के भाग्य पर ही खिला रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं, आज हमारे वंश में हमारा यह लड़का ऐसा सौभाग्य प्राप्त, इसलिए बड़े खुश हैं। गोपियां कह रही हैं या वेणु उनके माता पिता, माता माने ये सरोवर जलाधार नदियां और ये वृक्ष हमारे सब शत्रु हैं, हमारे दुख के कारण यही हमारे हृदय में ताप दे रहे हैं और हमारा सौभाग्य छीन रहे हैं इन्हीं के वंश में, इसलिए ये तो बड़े आनंदित हो रहे हैं और उनका आनंदित देकर के इनके हृदय में बड़ा ताप, बड़ा खेद उठ रहा है इनके गोपियों के हृदय। वो कह रही है कि देखो साधारण ये नीरस और कठोर बांस का एक छोटा सा टुकड़ा, इसका इतना सौभाग्य और इसके सौभाग्य को देख करके यही तरह रहे हैं कि इसके माता पिता और भाई को जगत में सचमुच में इन्हीं का जन्म था। हम ऐसे दुर्भागा हैं, ये दिन रात उनके होठों पर कभी बंतस्थल पर पड़ा रहता है, कभी अपनी पगड़ी में रखते हैं, कभी फेटे में रखते हैं। और हमारा दुर्भाग्य, हम चाहने पर भी उस वंश में जन्म कर उनके साथ में बचपन से खेल करके भी हमारा सौभाग्य नहीं है। बड़ी दुखी है। एक सखी उसमें से कहती, हमारे दुर्भाग्य का कारण कौन है? ये देव इनका बेटा करोड़ों और विश्व, इसे क्यों न हमें इसे सभी मिल करके चलो और चल करके इसको उस कृष्ण के हाथों से छीन लें, अथवा कौशल पूर्वक बहाना बना करके इसको हम लोग चोरी कर लें और ऐसे गुप्त स्थान में रख देंगे कि कभी भी जीवन में इसका ऐसा सौभाग्य नहीं होगा जो कि कृष्ण के अधरों पर हमारे सामने बैठ करके और हमें चिढ़ाए, इसे चलो ये चोरी कर लें। ऐसा सोच करके गोपियां ये कर रही हैं। चलो अभी सभी हम अकेले काम नहीं है, ये कृष्ण को चित्त को इधर उधर करना है। कृष्ण अनमने हो जाएंगे किसी काम में, हम लोग उनको लगा देंगे और बस उसे उनके हाथ से ले लेंगे, कैसे ले लेंगे? कृष्ण चौपट खिलाने लगे और वो खिलाने कृष्ण ने मनोनिवेश उसमें कर दिया। राधा जी उनको हरा रही हैं, कृष्ण हार रहे हैं और उस समय में देखा जी इनका मन कहीं दूसरी जगह, गोपियां ने ललिता जी ने और किसी ने उधर से हटा दिया दूसरी गोपी, उसने तीसरी को चौथी को और यहां तक कि उसे बहुत दूर कहां लेकर के रख दिया और वो पान मधुमंगल का है, तुम्हारी बंसी किधर गई? उसके बंसी कहा, अरे तुम अपनी लज्जा हारा, तुम्हारा अपना सब कुछ हार गया, अपनी माला हार गया, सब कुछ और बंसी को भी हार गया, अब तो मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, कहीं हमको भी तुम दाव पर दे देगा और तुम्हारी क्या दशा होगी? तुमने देखा जी बंसी कहां? देखा जी सचिन से बंसी नहीं। तो ऐसे गोपियां उस समय सोच करके कृष्ण को बंसी का अपहरण करने के लिए कहती है, चलो ऐसी बंसी को दंड देना ही हमारे, ऐसा करता इस श्लोक से ये ध्वनित होता है। इस सब तत्व अस्तु मुमुक्षु सर्वो बिंदु ने टीका दे रहे हैं, इसको समझ करके यदि हमें ब्रज के भाव के प्रति थोड़ा सा भी लोभ उत्पन्न हुआ, हमारा जीवन भी ऐसा हो, हमारी भक्ति भी ऐसे ही हो, हम इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार की भक्ति नहीं चाहते हैं, उसका जीवन भक्ति का अधिकारी कौन है? भक्ति का अधिकारी सदाचारी व्यक्ति नहीं है या असदाचारी व्यक्ति नहीं है, जो कोई जिस स्थिति में रहे, खाने पिता सम्मान जिस किसी भी स्थिति में रहे, महान दुर्जन हो, व्यभिचारी हो, लंपट हो, कोई विवाद नहीं, वह पा सकता है। और महासदाचारी सन्यासी सब कुछ त्याग करने वाला भी नहीं पा सकता, एक गुण है जो महादुराचारी व्यक्ति भी उसको पा सकता है, वो गुण क्या है? श्रद्धामान जन, श्रद्धामान भक्ति का अधिकारी केवल श्रद्धा वाला, जिसको इसके प्रति श्रद्धा है, बिंदु में जैसे व्यक्ति को भी इसके प्रति जन होता है, तो वहीं से ही इस भक्ति का अनुशीलन कर सकता है। और महान सदाचारी होकर के भी, महाजोगी होकर के भी, सनत सनंदन सनातन जैसे व्यक्ति यदि उनके प्रति योगी तो इसके अधिकारी नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि हम समस्त अनर्थों को छोड़ करके ही परम शुद्ध होकर के इस भक्ति का आचरण करेंगे, कोई जरूरी नहीं। तो जहाँ है उसी स्थिति में रह करके उसके यदि सुनने में श्रद्धा हुई और लोभ हुआ तो इस भक्ति का अधिकारी है, अन्यथा कोई भी इसका अधिकारी नहीं। मन भाई से भी अधिक कंट्रोल होता है, भाई को कंट्रोल कर किया जा सकता है, कोई कर सकता है, करना सहज नहीं। यदि करने पर भी मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बातो बेगम मन सह क्रोध बेगम जीवा, इनका वेग का सहन करना बड़ा बड़ी कठिन है। कौन कर सकता है? जिसको भक्ति है वो नहीं करता, जिसको भक्ति नहीं है वो नहीं करता। इसलिए सब प्रथम हम अनर्थों को दूर करेंगे और तब भर भक्ति आएगी। ये मूर्ख लोग कहते हैं भक्ति तत्वों को नहीं जानने वाले, वो तो दोनों अन्य व्यतिरेका भ्रम, क्या भक्ति का अनुशीलन करेंगे साथ साथ में अनर्थ भी दूर करने का प्रयास करेंगे? कैसे? भक्ति के द्वारा। बिना भक्ति के द्वारा चित्त को कंट्रोल करना बड़ा भाग्य है। इसलिए भक्ति जितने परिमाण में आती जाएगी चित्त निर्मल हो जाएगा, किंतु लोग किसी भी अवस्था में हो सकता है, श्रद्धा किसी भी अवस्था में, दुराचारी व्यक्ति को भी भक्ति के प्रति लोभ हो सकता है, कोई भी उसमें हानि नहीं, किंतु उसका आदर करने के लिए सुख अनर्थों से रही ये होना उचित है, किंतु ये भक्ति के द्वारा है। इसलिए भक्ति के द्वारा अनर्थों को दूर करने की चेष्टा हमें, जो लोग भक्ति तो करते हैं अनर्थों को दूर करने की चेष्टा नहीं करते उनकी भक्ति आगे नहीं बढ़ती, इसलिए हमें करना है। किंतु भक्ति के द्वारा